पुस्तक सामर्थ्य के साथ सुसमाचार की घोषणा करना, लेखक रॉबर्ट प्रकाश। अध्याय एक, लोगों को सामर्थी बनाने का सौभाग्य। परमेश्वर ने अगुओं के लिए पांच प्रकार की सेवकाई ठहराई है, प्रेरित, भविष्यवक्ता या नबी, सुसमाचार सुनाने वाले, रखवाले या पास्टर, और उपदेशक, जो कि एक खास मकसद या उद्देश्य के लिए है। यदि हम उस मकसद या उद्देश्य को दरकिनारा कर दें तो कलीसिया परमेश्वर के द्वारा दिए गए तरीके और क्षमता के साथ काम करने में असफल हो जाती है, नाकाम हो जाती है। कलीसिया का भविष्य इन पांच प्रकार की सेवकाई करने वाले अगुओं पर निर्भर करता है और इन अगुओं की सफलता कलीसिया पर निर्भर करती है। मैं यहाँ पर इस बात पर विस्तार से चर्चा करूँगा जिस बात पर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया है, अर्थात यह कि पांच प्रकार की सेवकाई का जो अभिषेक है वह हस्तांतरित होने वाला अभिषेक है। कहने का मतलब यह है कि जिस किसी को इस पांच प्रकार की सेवकाई का अभिषेक मिला वह अपना अभिषेक दूसरे विश्वासियों के साथ बांट सकता है, अर्थात दूसरे विश्वासी भी उस अगुए के समान अभिषेक में इस्तेमाल हो सकते हैं। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और कुछ को उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। इफिसियों 4:11-12। यहाँ सिद्ध हो जाने का यूनानी भाषा में मतलब है तैयार किए जाना, और इसके लिए मूल यूनानी भाषा कटारी टिसोस का प्रयोग किया गया है। पांच प्रकार की सेवकाई का मकसद यह है कि पवित्र लोग तैयार किए जाएं, अर्थात सिद्ध किए जाएं, ताकि मसीह की देह कलीसिया सेवा का कार्य कर सके। पांच प्रकार की सेवकाई इस कारण दी गई है ताकि साधारण विश्वासी प्रेरित और तैयार किए जा सके। ये पांच प्रकार के सेवक अपने आप में संपूर्ण नहीं हैं और उनकी बुलाहट कलीसिया की आज्ञाकारिता पर निर्भर है। ये पांच प्रकार के सेवक एक दर्पण आईने के समान कार्य करते हुए साधारण विश्वासियों को उनकी क्षमता से रूबरू कराते हैं और परमेश्वर का अनुग्रह जो उन पर अद्भुत रीति से हुआ है वह उन पर प्रकट करते हैं। उपरोक्त पदों में साफ साफ समझाया गया है उस वरदान, अभिषेक और बुलाहट के विषय में जो कि परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी अपने जीवन और सेवकाई में प्रकट करे, दिखाए। पांच प्रकार की सेवकाई करने वाले सेवक कोई बहुत खास नहीं स्वयं अपने आप में, परंतु इसमें खास बात यह है कि परमेश्वर यह चाहता है कि सभी साधारण विश्वासियों को वह खास विश्वासी बनाए। यह महज क्रम है। सबसे पहले पांच प्रकार की सेवकाई, फिर पवित्र लोगों को तैयार करना और मसीह की देह की उन्नति होना। यदि आपको इन पांच प्रकार की सेवकाई में से किसी भी एक सेवकाई करने की बुलाहट प्राप्त हुई है तो आपकी उपलब्धि महज अपने वरदान के द्वारा सेवा करना ही नहीं होना चाहिए, परंतु अपने जैसे वरदान वाले विश्वासियों की प्रकृति तैयार करना होना चाहिए। हमें अपने समान अभिषेक वरदान वाले अन्य लोगों को भी तैयार करना चाहिए और सफलतापूर्वक उनके द्वारा सेवा को अंजाम देना चाहिए। नए नियम का प्रारूप, नमूना या मॉडल। प्रेरित पौलुस, जिन्होंने इफिसियों की पत्री लिखी है, अपनी बुलाहट को बखूबी भली भांति समझ पाए थे। वे अपनी शिक्षा में निरंतर बनाए रखते थे और लगातार दूसरे सेवकों और विश्वासियों को सेवकाई के लिए सशक्त और सामर्थी बनाते हुए तैयार कर रहे थे। ध्यान दें इस आज्ञा की ओर जिसके द्वारा पौलुस अपने शिष्य तिमोथियुस को उभार रहे हैं, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हों। दूसरा तिमोथियुस 2:2। प्रेरित पौलुस चाहते थे कि उनके समान वरदान और सामर्थ्य के साथ सेवकाई करने वाले अन्य लोग भी तैयार हों और स्पष्ट तौर पर तिमुथियुस को आज्ञा देते हैं कि वह दूसरे मनुष्य को भी सिखाएं, और जो जो बातें उन्होंने तिमुथियुस को सिखाई थी वे बातें वह आगे को अन्य विश्वास योग्य मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को सिखाने के इच्छुक हों। यहाँ पर विश्वास योग्यता ही मुख्य कुंजी है, क्योंकि 5 प्रकार की सेवकाई का अभिषेक और वरदान तो हस्तांतरित होने वाला होता है। यह वरदान और अभिषेक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचता है। विश्वास योग्य मनुष्य को ढूंढने की जगह अधिकतर अगुवे ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जिन्हें विशेष दान मिले हों, जिन पर विशेष अभिषेक हो, या फिर जिनकी विशेष बुलाहट हो, ताकि ये बातें उन्हें सिखा सकें और उन्हें ये बातें सौंप सकें, और ऐसे विशेष वरदान और अभिषेक पाए लोगों को अपने दल टीम में शामिल कर सकें। जरा ध्यान दें उस क्रम पर जो दूसरा तिमुथियुस 2:2 में पौलुस ने तिमुथियुस को बताया है। पौलुस से तिमुथियुस, तिमुथियुस से विश्वास योग्य मनुष्यों को, और विश्वास योग्य मनुष्यों से अन्यों तक ये बातें पहुंचनी हैं। साधारण शब्दों में विश्वास योग्यता का मतलब है अपने विश्वास के प्रति समर्पित होना, और यह खूबी आपको इस योग्य बना देती है कि आपको सामर्थी बनने के लिए तैयार किया जाए। पौलुस निरंतर अपने अभिषेक और वरदान को दूसरों को देने और प्रदान करने में लगे रहते थे। वे निरंतर अपने समान दूसरे मनुष्य को तैयार करते रहते थे। इन पदों पर ध्यान दें, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूँ जिससे तुम स्थिर हो जाओ, अर्थात यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूँ तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में है एक दूसरे से प्रोत्साहन पाएं। रोमियो 1:11-12। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। 1 तिमोथियुस 4:14। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। 2 तिमोथियुस 1:6। याद रखें कि इफिसियों 4:11-12 के अनुसार अगुओं की सफलता इस बात को देखकर पता चलती है कि वह कितनी कुशलता से कलीसिया मसीह की देह के दूसरे विश्वासियों को अपने समान प्रभावशाली और सक्षम बनाते हैं। हम इसका प्रमाण यीशु मसीह के जीवन के द्वारा देख सकते हैं कि उन्होंने अपने शिष्यों को सामर्थी रूप से तैयार किया ताकि वे भी यीशु के समान कार्य कर सकें। यीशु के द्वारा कहे गए निम्नलिखित शब्दों पर ध्यान दें, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा अर्थात तैयार और प्रशिक्षित किया जाएगा वह अपने गुरु के समान होगा। लूका 6:40। क्या आपने स्वामी के इस स्पष्ट शब्दों को सुना? हर व्यक्ति जब पूरी तरह से तैयार और प्रशिक्षित किया जाता है तो अपने गुरु के समान बन जाएगा। यीशु का लक्ष्य उद्देश्य यही था कि अपने चेलों में अपने आप को उतार दें, डाल दें, ताकि अपने चेलों को अपने जैसा और अपने समान बना दे। मित्रों, यीशु का उद्देश्य और मिशन अभी भी नहीं बदला है। अभी भी वह यही चाहता है कि उसका हर एक चेला पूरी तरह से तैयार और परिपक्व बने ताकि वह यीशु का प्रतिनिधित्व कर सके। यीशु की इस आज्ञा पर ध्यान दें जो उसने अपने चेलों को छोड़कर स्वर्ग में जाने से पहले दी। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। मत्ती 28:19-20। सब बातें जो यीशु ने हर एक चेलों को सिखाने की आज्ञा दी है उसमें सुसमाचार प्रचार करना, बीमारों को चंगा करना, मुर्दों को जिंदा करना और दुष्ट आत्माओं को निकालना आदि शामिल है। मत्ती 10:7-8। यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है जो कि विशेष योग्यता वाले अगुओं को साधारण विश्वासियों से अलग करे और उन्हें ऊंचा दर्जा दे। यीशु ने अपने चेलों पर पूरा भरोसा जताया। उनकी संख्या 12 से अधिक थी। लूका 10:1 और मरकुस 9:38-39। यीशु ने अपने चेलों में अपना निवेश किया जैसे कि उसने उन्हें सिखाया और तैयार किया, और उन्हें वे कार्य करने के लिए भेजा जो कार्य वह स्वयं करता था। यीशु ने उन्हें अपना दर्जा और स्थान दिया। हालांकि यीशु परमेश्वर का पुत्र था, फिर भी उसने पवित्र आत्मा से सामर्थ पाकर और पूरी तरह से पिता के अधीन होकर और महज एक मनुष्य बनकर सेवकाई की। फिलिप्पियों 2:5-8, इसलिए उसका मॉडल अनुकरणीय है और उसने अपने चेलों को प्रोत्साहित किया उन सब चीज़ों और कार्यों को करने के लिए जो कार्य वह स्वयं करता था। निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें। पानी पर चलने के दौरान यीशु ने पतरस को भी पानी पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया और पतरस कुछ समय तक सफलतापूर्वक पानी पर चलने पाया। मत्ती 14:26-29, यीशु के अंजीर के पेड़ को शाप देने पर जब अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया और इस पर चेले आश्चर्य करने लगे तो यीशु उन्हें तुरंत उन्हें सिखाने लगा कि तुम भी ऐसा कर सकते हो। मत्ती 21:20-22, यीशु ने 12 और 70 चेलों को समय समय पर तैयार और प्रशिक्षित किया और उन्हें सशक्त बनाया और सामर्थ दी कि वे उसी के समान जाकर प्रचार करें, बीमारों को चंगा करें और दुष्टात्माओं को निकालें। लूका 9:1-2, 10:1-9, 17:19, हर एक विश्वास करने वाले से यीशु ने एक अद्भुत वादा किया है कि जो चमत्कार और आश्चर्यकर्म उसने किए वही सब कार्य हर एक यीशु पर विश्वास रखने वाला कर सकता है। यूहन्ना 14:12। मैं आपको चारों सुसमाचार इंजील पढ़ने के लिए उत्साहित करना चाहूँगा ताकि आप सीखें कि दूसरों को किस तरह सेवकाई के कार्य के लिए तैयार किया जाए और सामर्थी और सशक्त बनाया जाए। जब आप मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना को पढ़ेंगे तो आप देखने पाएंगे कि किस तरह से यीशु ने अपने आराम, अपनी सुविधाओं और अपने व्यक्तिगत समय का त्याग चेलों के लिए किया ताकि वह उन्हें अपने समान बना सके। और 3 वर्ष के कम समय में ही उसने चेलों को अच्छी रीति से प्रशिक्षित और तैयार कर दिया और निश्चिंत होकर यह भरोसा रखते हुए संसार छोड़कर स्वर्ग चला गया कि उसका संदेश इस पृथ्वी पर फैलेगा और उसका मकसद इस पृथ्वी पर इन लोगों के द्वारा अवश्य पूरा होगा जिन्हें उसने तैयार किया है। मित्रों, क्या कहीं आपको ऐसा वाक्य देखने को मिलता है जहां यीशु ने अपने चेलों से कहा हो, रुको या करने की कोशिश मत करो, मेरा विशेष रूप से अभिषेक हुआ है यह सब करने के लिए, तुम यह सब नहीं कर सकते हो जो मैं करता हूँ। लोगों को सामर्थ्य और सशक्त बनाने के विभिन्न स्तर, लेवल्स। मैंने कई वर्षों से सेवकाई में जाना है उन विभिन्न तरीकों को जिसके द्वारा अगुवे अपने वरदानों और बुलाहट को लेकर कार्य करते और दूसरों को तैयार करते हैं। नीचे दिए गए चार्ट को देखकर हम जान पाएंगे कि हम किस स्तर पर पाए जाते हैं और परमेश्वर हमें किस स्तर पर देखने की इच्छा रखता है। कॉलम 1, लोगों को तैयार करने और सशक्त बनाने का स्तर। कॉलम 2, अगुओं की प्राथमिकता और जीवन जीने का तरीका। कॉलम 1, निम्न स्तर, स्वयं पर ध्यान केंद्रित। कॉलम 2, इस प्रकार का अगुआ अपने वरदान और अभिषेक का प्रभु की सेवा में इस्तेमाल करते समय पूरी तरह स्वकेंद्रित रहता है। इस अगुए के पास दूसरों को तैयार करने का कोई दर्शन नहीं होता है, इसलिए यह दूसरों को तैयार कर सशक्त बनाने की कोई कोशिश नहीं करता है। इस प्रकार के अगुवे केवल खुद को अभिषिक्त मानते और समझते हैं और दूसरों को महज साधारण समझते हैं। इस प्रकार का अगुआ जो पास्टर है वह केवल अपनी भेड़ों की चरवाही पर ध्यान केंद्रित करता है और इस स्तर का सुसमाचार प्रचारक केवल यीशु के लिए आत्माएं जीने पर ध्यान देता है। कॉलम 1, गिने चुने लोगों को थोड़ा बहुत तैयार करना एवं सशक्त बनाना, अधिकतर स्वयं केंद्रित। कॉलम 2, इस स्तर का अगुआ अधिक समय अभिषेक के साथ सेवा करते हुए बिताता है। हालांकि इस स्तर के अगुओं को इस बात का एहसास होता है कि भविष्य के अगुए भी पाए जाते हैं, हमारे बीच उन्हें भी तैयार किया जाना चाहिए। इस प्रकार के अगुए अपने प्रभाव के क्षेत्र में भविष्य में इस्तेमाल होने के लिए ऐसे लोगों अगुओं को खोज निकालते हैं, तैयार करने एवं सशक्त बनाने के लिए, जो कि उन्हीं के समान अभिषेक एवं वरदान पाए होते हैं और जिनकी बुलाहट उनके स्वयं के जैसे होती है। उदाहरण के तौर पर एक सुसमाचार प्रचारक अगुआ उभरते हुए सुसमाचार प्रचारकों को कलीसिया में से नाम लेकर बुलाता है और फिर उन्हें तैयार करता है। यहाँ पर केवल कुछ ही लोग तैयार किए जाते हैं, ना कि पूरी कलीसिया। कॉलम एक, कलीसिया को तैयार करना दूसरे नंबर की प्राथमिकता होना। कॉलम दो, इस स्तर के अगुओं को विश्वासियों की क्षमता का अधिक तरह से पता होता है। उसे पता होता है कि कौन सेवकाई में कितना लिप्त है और परमेश्वर की बुलाहट और योजना उसके लिए क्या है, लेकिन फिर भी उन्हें तैयार करना दूसरे नंबर की प्राथमिकता होती है। उनके लिए प्रथम स्थान होता है उसका अपना अभिषेक और बुलाहट। इस प्रकार का अगुआ तब तक तो लोगों को तैयार करने में खुश रहता है जब तक उसका अपना हित सुरक्षित बना रहता है और दूसरा उस ऊंचाई पर नहीं पहुंचता जिस ऊंचाई पर यह अगुआ है। असुरक्षा की भावना, जलन, ईर्ष्या आदि इसे दूसरों को सशक्त बनाने से रोकते हैं। यह अगुआ दूसरों को एक स्तर तक ही सशक्त बनाता है। कहीं ऐसा ना हो कि जिन्हें वे तैयार कर रहा है वे इससे ऊंचा ना उठ जाएं। कॉलम एक, पूरी तरह से लोगों को तैयार करना एवं सशक्त बनाना और त्यागपूर्ण जीवन जीने का तरीका, एक कुर्बानी वाला जीवन। कॉलम दो, पांच प्रकार की सेवकाई की पूरी अभिव्यक्ति। यह अगुआ हर एक विश्वासी को तैयार करने को अपनी सफलता के रूप में देखता है। यह अगुआ रणनीतिक तरीकों से चेलों को चुनता, उन्हें तैयार करता और उन्हें अवसर प्रदान करता है। सेवकाई करने के और सेवकाई में बढ़ने और उन्नति करने के अवसर उन्हें देता है। वह बखूबी जानता है कि मसीह की देह को तैयार करने के लिए अपना आराम, सुविधा और समय का त्याग करना जरूरी है। सेवकाई के दौरान अपने वरदान का प्रयोग करके हर अवसर का इस्तेमाल वह दूसरों के लिए आदर्श बन उन्हें सिखाने और तैयार करने के लिए करता है। यीशु के समान इस तरह ऐसे स्तर का अगुआ अपनी अगुवाई के थोड़े से समय में ही दूसरों को तैयार और प्रशिक्षित कर देता है ताकि वे उसके ना रहने पर उसका स्थान ले लें और उसकी सेवकाई किसी एक विशेष अगुवे पर निर्भर नहीं रहती, परंतु बहुत से विश्वास योग्य स्त्री और पुरुषों पर निर्भर रहती है। व्याप धोखा और गलत मकसद या उद्देश्य। साधारण विश्वासी प्रायः अपने आप को पांच प्रकार की सेवकाई के योग्य समझते ही नहीं हैं। जब उन्हें विशेष बुलाहट या फिर पूर्णकालिक सेवकाई, फुल टाइम मिनिस्ट्री करने का अवसर मिलता है, तभी अपने आप को इस प्रकार की सेवकाई के योग्य समझ पाते हैं। ज़्यादातर कलीसिया सिर्फ बैठकर सुनने वाले श्रोता बने रहना पसंद करती हैं, जबकि पांच प्रकार की सेवकाई अपने साथ जिम्मेदारी का बोझ लेकर आती है। विश्वासी अपनी स्वयं की क्षमता, काबिलियत को ना देखकर अपनी अक्षमता और नाकाबिलियत को देखते हैं। वे अपने आप को अयोग्य समझते हैं। इस समस्या का उपाय यह है कि अगुए विश्वासियों को बताएं कि वे अगुए कोई विशेष या अनोखे नहीं हैं, और विश्वासियों को यह भी बताया जाना चाहिए कि वे भी अगुओं के समान ही परमेश्वर की सेवा के लिए बुलाए गए हैं और अगुओं के समान ही वे भी सेवा करने के लिए सक्षम और योग्य हैं। मित्रों, यदि शैतान आपको आपकी बुलाहट जानने से और उसके अनुसार काम अथवा सेवकाई करने से नहीं रोक सका, तो उसकी अगली योजना यह है कि आपको इस बात का भरोसा दिलाए एवं आश्वस्त करे कि आप विशेष रूप से सेवा के लिए चुने गए हो। आपके ऊपर एक अनोखा अभिषेक है और आप दूसरों से अलग हैं। शैतान घमंड के मूल पाप, प्रारंभिक पाप को प्रकट करके सफलतापूर्वक मसीही अगुओं की कई पीढ़ियों को धोखा देने में सफल या कामयाब रहा है। दूसरों को तैयार करने एवं सशक्त बनाने की जगह परमेश्वर के इन सेवकों ने लोगों की भीड़ और संसाधनों को अपने लिए जमा कर लिया ताकि वे अपने आप को बड़ा और महान दिखाने के लिए और अधिक क्षमता से कार्य कर सकें। एक मशहूर सुसमाचारक, प्रचारक, इवेंजलिस्ट को एक अपना स्वयं का हवाई जहाज चाहिए ताकि वह अधिक से अधिक जगह जाकर सभाएं कर सके। एक पास्टर एक बड़ी इमारत बनाने की कोशिश में लगा रहता है ताकि इमारत की भव्यता से लोगों को प्रभावित कर सके और उस बड़ी इमारत में बैठने और आने वालों की संख्या देख लोग प्रभावित हों। साधारण विश्वासियों को तैयार किया जाना चाहिए जिससे वे समर्थी रूप से यीशु मसीह के गवाह बन सके उन खोए हुए लोगों के बीच में, परंतु इन साधारण विश्वासियों को कहा जाता है कि जाकर अपनी जान पहचान वाले अविश्वासी लोगों को लेकर उस सुसमाचारक प्रचारक की सभाओं में आए जो कि हमारे नगर या कलीसिया में सभाएं करने को इन दिनों आया हुआ है। साधारण विश्वासियों को तैयार एवं प्रशिक्षित नहीं किया जाता है कि वे अपने परिवार की चरवाही करें और उन्हें परमेश्वर का वचन सिखाएं, परंतु उन्हें पूरी तरह से रविवार के प्रचार पर, जो कि एक योग्य वक्ता के द्वारा सुनाया जाता है, निर्भर और आश्रित कर दिया जाता है। मसीही अगुए बड़ी आसानी से शैतान के जाल में फंसकर अपने अभिषेक और वरदानों का इस्तेमाल स्वयं अपने को ऊंचा उठाने और अपनी स्वयं की सेवा करने में लगे रहते हैं। स्वार्थपूर्ण इच्छाएं और घमंड बड़ी आसानी से परमेश्वर की सेवकाई के लबादे अथवा वस्त्र में छिप जाते हैं। पाप हम में से किसी को भी बड़ी आसानी से धोखा दे सकता है और घमंड हम में से किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। जब हम दूसरों को सेवकाई के लिए तैयार करते हैं और सशक्त बनाते हैं, तो ऐसा करके हम घमंड और स्वार्थपूर्ण इच्छाओं पर प्रहार चोट करते हैं। मेरे पास्टर बेन एक निस्वार्थ अगुवे का अद्भुत उदाहरण रहे हैं। हालांकि वे मुझसे अधिक योग्य एवं सक्षम थे, फिर भी उन्होंने मुझे आगे बढ़ने में, उन्नति करने, परिपक्व बनने और अपने वरदानों का इस्तेमाल करने के अनगिनत अवसर प्रदान किए। किसी भी ऐसे अगुए को देखिए जो कि दूसरों को उठाने, पढ़ाने और तैयार करने में निवेश कर रहा है, खुद को मिले मौके को गवाते और त्याग देते हुए। और ऐसे अगुओं में निश्चित रूप से आपको यीशु मसीह का स्वभाव दिखाई देगा। परंतु बड़ी संख्या में अगुए ऐसे हैं जो कि अपने स्वयं के पद और प्रभाव के क्षेत्र में अधिक निवेश करते हैं। पिता का प्रेम सबको ग्रहण और स्वीकार कर रहा है, परंतु एक अनाथ आत्मा जो पिता के प्रेम को न स्वीकारते हुए अपनी एक अनोखी और साधारण लोगों से अलग पहचान बनाने को ललायत और इच्छुक है, जिसमें कि उसे झूठी सुरक्षा और अपनी कीमत का झूठा एहसास हो सके। दूसरों को सशक्त न बनाकर ये अगुए निरंतर आजमाइश परीक्षा में पड़ते हैं, अपने आप को बढ़ाने, परिपक्व करने और अपने वरदान और अभिषेक को और उन्नत बनाने में, ताकि जो वे करते हैं उससे भी बेहतर कर सके। ऐसा करके वे साधारण विश्वासी और अगुओं के बीच की दरार एवं खाई गैप को और अधिक चौड़ा कर रहे हैं और साधारण विश्वासी के उनके स्तर तक के वरदान और अभिषेक के स्तर तक पहुंचने की संभावना को, उम्मीद को वे खत्म कर देते हैं। उनके उस अभिषेक के कारण साधारण विश्वासियों का ध्यान उन्हीं पर लगा रहता है और उन्हें साधारण विश्वासियों का पूरा सहयोग मिलता है, क्योंकि साधारण विश्वासी सोचते हैं कि इस प्रकार के अभिषिक्त अगुओं का सहयोग करना ही परमेश्वर की इच्छा है और वह कार्य है जो कि परमेश्वर ने उनके करने के लिए ठहराया है। ऐसा करके हम ऊपर की ओर नहीं उठ रहे होते हैं, वरन नीचे की ओर जा रहे होते हैं। ये सब सुव्यवस्थित कलीसियाओं और संस्थाओं में पाए जाने वाले विश्वासियों की काबिलियत और क्षमताओं के लिए एक मृत्युदंड की सजा के समान साबित होता है। जब मैंने सुसमाचार प्रचारक के रूप में चंगाई की सेवकाई प्रारंभ की थी, तो मेरी सभाओं में शुरू में सैकड़ों लोग आते थे, फिर भीड़ की संख्या जल्द ही बढ़कर हजारों में हो गई। जितनी अधिक भीड़ सभाओं में जुटती थी, मैं उतना ही अधिक उत्साहित हो जाता था और एक नशे के समान यह बात सिर पर अस्थायी तौर पर कुछ समय तक चढ़ी या छाई रहती थी। जिस तरह के अंदरूनी अनुभव से होकर मैं गुजर रहा होता था, उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता था, परंतु जल्दी ही मुझे एहसास हो गया कि मेरे हृदय का वह हिस्सा एक अनाथ आत्मा या परिचय के बंधन में पाया जाता है। वह जो नशा मुझ पर छाया हुआ था, उसके कारण मैं अपनी कीमत मूल्य को कुछ अधिक ही आंक रहा था, और जैसे जैसे मेरे प्रभाव का क्षेत्र बढ़ रहा था, वो नशा मेरे सिर चढ़कर बोल रहा था। हालांकि मेरे कुछ गलत मकसद के बावजूद भी परमेश्वर ने मुझे उन सभाओं में अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया और बहरे लोग चंगाई पाकर सुनने लगे, अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, लोगों में से दुष्ट आत्माएं निकली और बहुत से अविश्वासियों ने यीशु के नाम पर उद्धार प्राप्त किया। हमारा मकसद सही नहीं होने पर भी परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना तुरंत बंद नहीं कर देता, और यह सोचना बिल्कुल गलत है कि पाप के कारण अभिषेक हमें छोड़कर चला जाता है, क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट और वरदान अटल और स्थिर है, रोमियो 11:29, और कायम रहता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ पश्चाताप और तौबा के वरदान के लिए। गलत पहचान जिसे मैं खोज रहा था उसके बारे में मैं जान पाया, और मैंने उसका पीछा करना छोड़कर उस सत्य को जाना जो कि हमें स्वतंत्र आज़ाद करता है। मित्रों, अब मैं बहुत स्वतंत्र महसूस करता हूँ। अब मैं हजारों की भीड़ में खड़े होकर बड़े चिन्ह और चमत्कारों को प्रकट करते हुए प्रचार करने की जगह महज ऐसे 50 विश्वासियों को तैयार करना ज़्यादा पसंद करूँगा जो मुझसे अधिक सामर्थ्य रूप से सेवकाई करें और इस्तेमाल हों। अगर हमें इन दोनों बातों को चुनना पड़े तो ऐसा होगा कि पहले 50 विश्वासियों को मैं पूरी तरह से तैयार करूं और उसके बाद मौका मिलने पर 5,000 की भीड़ के बीच सेवकाई करूं, और ऐसा करते समय मैं उन तैयार और प्रशिक्षित किए गए 50 विश्वासियों को भी वहां सेवकाई करने का और अपनी बुलाहट और वरदानों के साथ इस्तेमाल होने का मौका प्रदान करूँ। गुणात्मक वृद्धि बढ़ोतरी का मॉडल नमूना। कई वर्षों तक मैंने ऐसे मॉडल को सीखा, अध्ययन किया जो कि बहुत अधिक प्रभावी है, और ऐसे मॉडल को भी देखा जाना जो लोगों को पवित्र आत्मा के द्वारा सशक्त बनाए जाने तैयार किए जाने में बाधक होते हैं। संस्थागत धर्म विज्ञान की कक्षा में दी जाने वाली शिक्षा, जिसमें भविष्य की सेवकाई के लिए व्यवहारिक उपयोग प्रतिदिन नहीं कराया जाता है, यह मॉडल सबसे कम असरदार प्रभावी। इस प्रकार के मॉडल में अधिक ध्यान ज्ञान हासिल करने में लगा रहता है और व्यवहारिक आज्ञाकारिता पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मित्रों, यीशु ही हमारा सबसे अच्छा मॉडल था और हमेशा रहेगा। अपने स्वामी को ध्यानपूर्वक सेवकाई करते हुए देखना और उसे सेवकाई करते हुए देखकर उसकी सेवकाई में शामिल होना और स्वामी यीशु के द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करने में आज्ञाकारी बने रहना ही परमेश्वर के द्वारा हमें दिया गया सर्वोत्तम सबसे अच्छा सूत्र नुस्खा या फार्मूला है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण खास बात बताना चाहता हूँ। वचन के ये सिद्धांत अगुओं और विश्वासियों के लिए लिखे गए हैं। हालांकि लगता है कि यह गुणात्मक वृद्धि का भाग सिर्फ अगुओं के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए देखते हैं, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं उन्हें विश्वासी योग्य मनुष्य को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हों। 2 तीमोथियस 2:2। यदि आप 5 प्रकार की सेवकाई में से किसी भी एक सेवकाई को नहीं भी कर रहे हैं तो भी वचन के इस पद के अनुसार आप बुलाए गए हैं। आपकी बुलाहट है कि आप दूसरों को तैयार करें, प्रशिक्षित करें और सक्षम बनाएं। दूसरे को तैयार करने और सक्षम बनाने का कार्य पौलुस के द्वारा 5 प्रकार की सेवकाई के साथ शुरू होता है जो आगे तीमुथियुस को सौंपा जाता है, और तीमुथियुस उसे अन्य विश्वास योग्य मनुष्यों को सौंपता है, और ये विश्वास योग्य मनुष्य आगे इसे अन्य विश्वास योग्य मनुष्य को सौंपते हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि सुसमाचार जैसे जैसे पौलुस तीमुथियुस और अन्य मनुष्यों के द्वारा आगे बढ़ता गया समय के साथ उसका प्रभाव भी कम होता गया। ऐसा सोचना गलत है। वही पवित्र आत्मा जो पौलुस के अंदर पाया जाता था वह दूसरे अन्य विश्वास योग्य मनुष्य के अंदर भी पाया जाता था। इसलिए यदि आप अपने को विश्वासी कहते हैं तो परमेश्वर ने आपको भी बुलाया है कि आप दूसरों को सेवा कार्य के लिए तैयार करें और सशक्त बनाएं। यीशु के द्वारा दिखाया गया 4 कदम 4 स्टेप का मॉडल या नमूना। पहला, साधारण आज्ञाकारिता पर आधारित शिक्षाएं। व्यवहारिक आज्ञाकारिता की बुनियादी शिक्षाओं पर जोर दें और वचन में से सिखाएं। ऐसी बातें सीखना इसलिए जरूरी है ताकि हम आज्ञा का पालन कर सकें। दिमागी समझ ज्ञान ही काफी नहीं, परंतु उसका व्यवहारिक उपयोग होना चाहिए। सीखी बातों को अमल में लाना चाहिए। मत्ती रची सुसमाचार 5:5-7 पर ध्यान दें। ये व्यवहारिक बातें हैं, ये यीशु के द्वारा दी गई शिक्षाएं हैं जिसमें उन्होंने अपने चेलों को सिखाया कि किस प्रकार का जीवन उन्हें जीना चाहिए। यहाँ पर यीशु अपनी शिक्षाओं का अंत एक दृष्टांत के साथ करते हैं जिसमें वे आज्ञा पालन और व्यवहारिक उपयोग पर ज़्यादा जोर देते हैं। मत्ती 7:24। दूसरा, करके दिखाने के द्वारा सिखाना और तैयार करना। व्यवहारिक रूप से दूसरों के सामने प्रदर्शित करें कि आप किस प्रकार से सेवकाई करते हैं और आपका आचरण और आत्मिक जीवन शैली लोगों के सामने दिखाई देना चाहिए, लोगों पर प्रकट हो। आपका मकसद यह होना चाहिए कि लोग आपको और आपके जीवन को देख सुनकर तैयार किए जाएं और सशक्त बने। जो प्रार्थना आप गुप्त में करते हैं उसे उनके सामने करके दिखाएं। किस प्रकार से आप अपने व्यक्तिगत पापों का अंगीकार करते और उन पापों का सामना करते और जयवंत होते हैं, किस प्रकार बीमारों की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा की आवाज़ को आप कैसे सुनते हैं, वचन में से सुसमाचार संदेश आप कैसे तैयार करते हैं आदि, सब उनके सामने करके दिखाएं ताकि वे सीख सकें। आपके आत्मिक जीवन का हर हिस्सा व्यक्तिगत और सार्वजनिक उनके सामने प्रदर्शित होना चाहिए ताकि वे इन बातों को अपने अंदर ले लें, उतार लें। जब भी आप सेवकाई के लिए तैयार और प्रशिक्षित कर रहे हैं उन्हें अपने साथ रखें, और याद रहे ऐसा करने के दौरान आप उन्हें भी सेवकाई की बहुत सी बातें व्यवहारिक रूप से सिखा रहे हो। यीशु 3 वर्ष तक लगातार दिन रात अपने जीवन और सेवकाई के द्वारा अपने चेलों को तैयार करते और सिखाते रहे। उन्होंने कोई भी मौका अपने चेलों को सीख और शिक्षा देने का हाथ से नहीं जाने दिया। तीसरा, उन्हें अभ्यास प्रैक्टिस कराने के लिए उन्हें सम्मिलित करें और मौका दें। उन्हें प्रार्थना करने, सुसमाचार सुनाने और सेवकाई करने के बहुत से मौके प्रदान करते रहें जिससे कि वे उन्नति करें और तैयार हो सकें। बहुत सी बातें यदि आप उनके सामने करके उन्हें दिखा चुके हैं तो इसका मतलब वे तैयार हो चुके हैं और आप उन्हें भी सेवकाई में अपना भागीदार अब बना सकते हैं। उन्हें आप अपने साथ सेवकाई के कार्य में सम्मिलित करें। चौथा, उनके करने के लिए कार्य ठहराएं और उस कार्य को करने के लिए उन्हें भेजें। मत्ती 4:18 में हम पाते हैं कि यीशु ने अपने प्रथम शिष्यों को अपने पास बुलाया, इकट्ठा किया। मत्ती 10:1-5 में हम पाते हैं कि यीशु ने उन्हें आज्ञा देकर विभिन्न गांवों और नगरों में प्रथम बार अकेले यीशु के बिना प्रचार करने और सेवकाई करने के लिए भेजा। यीशु ने क्रूस पर चढ़ाए जाने और स्वर्गारोहण से पहले सिर्फ 3 वर्ष तक ही सेवकाई की। हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि यीशु ने अपने इन चेलों को कम से कम 4 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 9 महीने तक गहन प्रशिक्षण दिया होगा। निरंतर अपने साथ रखकर और दिखाकर यीशु हमसे आज्ञाकारिता चाहता है। वह चाहता है कि हम सीखें और आगे बढ़ जाएं। विश्वास का कदम आगे बढ़ने से ना हिचके जाएं और ना रुके, और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। यीशु ने अपने अन्य चेलों को भी भेजा, 70 और चेले, कि वे सुसमाचार सुनाएं, बीमारों को चंगा करें और दुष्ट आत्माओं को निकालें। ये 70 यीशु के मुख्य 12 चेलों से अलग थे। लूका 10:1, यीशु ने समय समय पर लगातार इन चेलों में सुधार करना पड़ा, परंतु यीशु की प्राथमिकता में आज्ञाकारिता, पूर्ण सिद्धांत और परिपक्वता से ज़्यादा अहम थी। अंतिम विचार, चाहे आप अपने बारे में कैसी भी राय क्यों ना रखते हों, चाहे आपने जो भी किया हो या ना भी किया हो, और चाहे आप यीशु की आज्ञा मानने में कितना भी संघर्ष क्यों ना करते हों, लेकिन फिर भी आप मसीह की देह हैं। मसीह का अर्थ है अभिषिक्त। यदि आप उसकी देह हैं तो आप भी अभिषिक्त हैं, और उसका अभिषेक और वरदान महज कुछ लोगों के लिए ही नहीं परंतु आपके लिए भी उपलब्ध है। आप कहाँ रहते हैं, किस भाषा को बोलते हैं और आपका प्रभाव का क्षेत्र क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका रहने का स्थान, भाषा या प्रभाव क्षेत्र अलग अलग जरूर हो सकता है, परंतु परमेश्वर के शब्द आज आपके लिए यही है, मेरे बेटे जो कुछ मेरा है सब तेरा और तेरे लिए उपलब्ध है। आप बुलाए गए हैं, आप चुने हुए हैं, आप अभिषिक्त हैं। जरूरत सिर्फ यह है कि आप विश्वास करें कि आप बुलाए गए, चुने गए एवं अभिषिक्त हैं। पांच प्रकार की सेवकाई परमेश्वर के लिए ठहराई है और वह आपको इसे करने के लिए निमंत्रण दे रहा है एवं बुला रहा है। पांच प्रकार की सेवकाई के अनुग्रह से हर एक विश्वासी भर जाए, वह तैयार हो जाए, चरवाहे पास्टर के रूप में चरवाही और पालन पोषण करें, सिखाने वाले उपदेशक टीचर के रूप में प्रशिक्षण दें और सवारें और तैयार करें, सुसमाचार सुनाने वाले इवेंजलिस्ट के रूप में भटके और खोए हुए तक पहुँचे, भविष्यवाणी के द्वारा पवित्र आत्मा के कार्य को प्रदर्शित करें और प्रेरित के रूप में परमेश्वर के राज्य के प्रभाव को और बदलाव को अपने समाज और संस्कृति में ले आएं। वह दिन तेजी से आ रहा है जब कोई भी यह ना कहेगा कि मैं खोए हुए और भटके हुए लोगों तक इसलिए नहीं पहुंच सकता क्योंकि मैं एक सुसमाचारक प्रचारक नहीं हूं, और मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता और बीमारों को चंगा नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक अभिषिक्त भविष्यवक्ता नहीं हूं। अनुग्रह का सुसमाचार सेवकाई क्षेत्र को समतल बनाता है और परमेश्वर अपनी देह को यीशु के द्वितीय आगमन से पहले एक ऐसी महानतम बेदारी के लिए उठा रहा, तैयार कर रहा है जैसे कि अभी तक इस संसार ने नहीं देखी है। समूह में अथवा व्यक्तिगत रूप में मनन करने के लिए व्यवहारिक प्रश्न। पांच प्रकार की सेवकाई वाले सेवकों के लिए पहला प्रश्न, क्या आप अपनी सेवकाई की शैली तरीकों के द्वारा विश्वासियों को प्रेरित और तैयार कर पाते हैं कि वे आपके स्तर पर सेवकाई में पहुंच सकें, या फिर आपकी सेवकाई की शैली तरीकों और उनकी क्षमता काबिलियत के बीच में जो अंतर है उन्हें हतोत्साहित करता है। दूसरा प्रश्न, क्या आप मानते और विश्वास करते हैं कि आपका उद्देश्य और आपकी बुलाहट दूसरों को सेवकाई के लिए तैयार करने की है? यदि नहीं तो कारण बताएं। तीसरा प्रश्न, क्या आपने अधिक समय और ऊर्जा का निवेश सिर्फ अपने वरदानों को बढ़ाने में किया है या फिर अपने वरदानों को दूसरों को दिया या बांटा है? चौथा प्रश्न, क्या आप अपनी बुलाहट या वरदानों का दूसरों में निवेश कर रहे हैं? किस प्रकार से आप अपने समय और कुशलता व क्षमता का उपयोग इस प्रकार से कर सकते हैं कि आप स्वयं अपने वरदानों के साथ प्रभु के लिए इस्तेमाल हों और साथ ही साथ मसीह की देह व कलीसिया व विश्वासियों को भी तैयार कर सकें, सशक्त बना सकें? पांचवा प्रश्न, क्या आपके जीवन में चेलों की कड़ी है? ध्यान दें, क्या आपके पास पौलुस है गुरु के रूप में जो आपको तैयार करता है एवं सिखाता है? क्या आपके पास जीवन में कोई तिमोथियुस है चेले के रूप में जिसे आप तैयार कर रहे हैं? क्या आपने अपने तिमोथियुस चेलों को कोई निर्देश दिया है कि वे विश्वास योग्य मनुष्य को सिखाएं, तैयार करें? छठवां प्रश्न, अपने वरदानों के साथ प्रभु के लिए इस्तेमाल होना दूसरों को तैयार और सशक्त बनाने, प्रशिक्षित करने से कहीं ज्यादा आसान है क्योंकि दूसरों को तैयार करने के लिए जरूरत होती है अधिक प्रेम दिखाने की, दर्शन, धीरज एवं सहनशीलता की। आप दूसरों में निवेश करने और उन्हें तैयार करने में अपने आप को कैसे जवाबदेह बना सकते हैं? हम दूसरों को सेवकाई के लिए कैसे तैयार करें? यीशु से हम दूसरों को तैयार करने के बारे में क्या सीख सकते हैं? सातवां प्रश्न, पिछली बार ऐसा कब हुआ जबकि आपने सेवकाई के अवसर को छोड़कर, त्याग कर उस समय का इस्तेमाल अपने किसी चेले को तैयार करने में किया? आठवां प्रश्न, क्या आप कभी स्वयं की सेवा करने, स्वयं को बढ़ाने, ऊंचा उठाने और स्वार्थी महत्वाकांक्षा के जाल में फंसे हैं, शिकार हुए हैं? यदि हाँ तो बताएं कि किस प्रकार से अपने वरदानों को चमकाना और बढ़ाना आपके लिए फंदा साबित हुआ है और ऐसा करने के दौरान आप स्वयं को हित साधने वाले साबित हुए। साधारण विश्वासियों के लिए सवाल। पहला सवाल, इस अध्याय को पढ़ने से पहले क्या आपने देखा और जाना था कि 5 प्रकार की सेवकाई की बुलाहट और वरदान आपको भी प्राप्त हो सकते हैं? क्या आपने पहले कभी सोचा था कि 5 प्रकार की सेवकाई का आत्मिक स्तर आपकी पहुंच में है और आपके अंदर क्षमता है कि आप 5 प्रकार की सेवकाई को अंजाम दे सकें? दूसरा प्रश्न, कौन सी वे आत्मिक बातें हैं जो आपको 5 प्रकार की सेवकाई के अभिषेक और वरदानों के योग्य ठहराती है? क्या आपके अंदर वर्तमान में वह खूबी या योग्यता है? तीसरा प्रश्न, क्या आपके पास ऐसा अगुआ है जो कि आपके जीवन में निवेश करने में लगा हो ताकि आपको 5 प्रकार की सेवकाई के लिए तैयार और प्रशिक्षित कर सके? यदि नहीं, तो क्या आपने किसी अगुए को खोजा है जो कि आपको सिखा सके? आप आत्मिक उन्नति और सेवकाई करने के लिए किस प्रकार व्यवहारिक रूप से अपने आप को समर्पित कर सकते हैं कि आप 5 प्रकार की सेवकाई के लिए प्रशिक्षित एवं तैयार किए जा सकें? चौथा प्रश्न, क्या आप अपने आप को अभिषिक्त मानते हैं? आप कौन सा आत्मिक मूल्यांकन करते हैं यह जानने के लिए कि आप अभिषिक्त हैं अथवा नहीं? पांचवा प्रश्न, क्या आप परमेश्वर के अभिषेक और वरदान की भूख, प्यास और चाहत रखते हैं? यीशु मसीह का अनुसरण करने के दौरान क्या आप अपने आप को आत्मिक रूप से जीवित देखते व पाते हैं अथवा आप अपने आप को आत्मिक रूप से मृत देखते या पाते हैं? कौन सी ऐसी चीज है जो कि आपको सेवकाई के लिए तैयार अथवा प्रशिक्षित होने और सशक्त बनने में रोकती है? छठवां प्रश्न, आप कुछ समय के लिए अपने आप को तिमुथियुस मान लें, क्या आपके पास आपके जीवन में कोई पौलुस सरीखा मनुष्य है? क्या आप विश्वास योग्य स्त्री और पुरुषों में भी निवेश कर रहे हैं? ध्यान दें, आप किस को अपना पौलुस बना सकते हैं और तैयार होने वाली की कड़ी में कौन वे विश्वास योग्य स्त्री और पुरुष हो सकते हैं जिन्हें आप तैयार करेंगे?